सात मार्च बुधवार दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। त्रिपुरा में लेनिन के बाद कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने की आलोचना।
इनकी सोच में काफी चीजें हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से एकदम नहीं मिलती है। वो आदेश देंगे और ये नहीं रोकेगा, ये हो ही नहीं सकता है। ये मुझे दिखावटी लगते हैं। ये थमेगा नहीं जब तक ऑपोजिशन में कुछ ताकत आए।
दुनिया जहान में आज आपको बताएंगे इटली में राजनीतिक अस्थिरता की वजह क्या है।
जो आदमी मिलान में बैठा हुआ है, जो काफी इंडस्ट्रियलाइज जगह है, उसकी प्रायोरिटीज, जो सिसली में बैठा हुआ आदमी, जहाँ सोचने का तरीका, रहने का और काम करने का तरीका काफी भिन्न है मिलान से, तो ये रिफ्लेक्ट होता है एक नेशनल इलेक्शन।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। त्रिपुरा में रूसी क्रांति के नायक लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने के बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में कई नेताओं की मूर्तियां तोड़ने की वारदातें हुई हैं। तमिलनाडु के वेलोर में ईवीआर पेरियार की मूर्ति से खिलवाड़ किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के जाधवपुर विश्वविद्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर कालिख पोत दी गई और उत्तर प्रदेश के मेरठ में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई। केंद्र सरकार ने घटनाओं का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकारों से उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए कहा है। इस मुद्दे पर संसद में भी भारी हंगामा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त ने एक बार फिर सीरिया की राजधानी दमिश्क के नजदीक विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पूर्वी घूटा पर सरकारी सैन्य बलों के हमले की तीखी आलोचना की है। जैद रादल हुसैन ने कहा है कि कुछ सौ लड़ाकों से लड़ने के लिए लाखों नागरिकों पर किए जा रहे हमलों को सही नहीं ठहराया जा सकता है। हुसैन ने कहा कि सीरियाई सरकार के नागरिकों की रक्षा करने के दावे मजाकिया और शर्मनाक हैं। उन्होंने कहा कि जब आप आसानी से अपने ही लोगों को मार सकते हैं तो आसानी से झूठ भी बोल सकते हैं। हुसैन ने कहा,
Recent attempts to justify indiscriminate brutal attacks on hundreds of thousands of civilians by the need to combat
पूर्वी घूटा में लाखों लोगों पर किए जा रहे अंधाधुंध हमलों को कुछ सौ लड़ाकों से लड़ने की जरूरत के नाम पर सही ठहराने की कोशिशें कानूनी और नैतिक तौर पर कमजोर हैं। साथ ही जब आप अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हों तो झूठ बोलना भी बहुत आसान हो जाता है। श्रीलंका में अल्पसंख्यक मुसलमानों पर जारी हमलों के मद्देनजर पुलिस विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सरकार ने फेसबुक समेत सोशल मीडिया पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम नफरत को रोकने के लिए उठाया गया है। कैंडी में पुलिस ने बौद्ध भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। उत्पाती बौद्ध समूह मुसलमानों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। रविवार को मुसलमानों के समूह से झड़प के बाद एक बौद्ध युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया था। हालांकि प्रदर्शनकारी कर्फ्यू का उल्लंघन कर बाहर निकल आए। श्रीलंका में स्थानीय बौद्ध और मुसलमानों के बीच हाल के महीनों में तनाव बढ़ा है। बौद्ध समूह म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों के श्रीलंका पहुंचने का विरोध कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम पर ऊंचा कर लगाने की स्थिति में अपने जवाबों की रूपरेखा तैयार कर ली है। यूरोपीय संघ की व्यापार आयुक्त सेसिलिया मॉलस्ट्रॉम ने बताया है कि यूरोप जवाब में अमेरिका के कई उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इनमें ऑरेंज जूस, पीनट बटर और कुछ प्रकार की बर्बन विस्की शामिल है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम पर प्रस्तावित कर लागू नहीं हो पाएंगे। ट्रंप के इस फैसले की घरेलू स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। उनके मुख्य आर्थिक सलाहकार गैरी कॉन ने इस कदम से असहमति जताते हुए इस्तीफा दे दिया है। तुर्की ने अमेरिका से कहा है कि वह उत्तर सीरिया में अपने सहयोगी कुर्द बलों को तुर्की सेना से लड़ने के लिए और लड़ाके न भेजने दें। तुर्की की सेना ने उत्तरी सीरिया के आफरीन क्षेत्र में कुर्द बलों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चला रखा है। तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी मानता है। कुर्द बलों ने मंगलवार को कहा था कि वह आफरीन की रक्षा के लिए तुर्क सेना से लड़ने के लिए सैकड़ों और लड़ाके भेजने जा रहे हैं। ये कुर्द मिलिशिया पहले अमेरिका के साथ मिलकर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे थे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करें संदीप सोनी का। भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति गिराए जाने के दो दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। हालांकि उनकी इस निंदा से पहले तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई और इसी तरह कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को भी निशाना बनाया गया। ये मुद्दा आज संसद में भी गूंजा। बीबीसी संवाददाता भूमिका राय इस खबर पर और जानकारी दे रही हैं।
त्रिपुरा के बाद तमिलनाडु और फिर कोलकाता। त्रिपुरा में मार्क्सवादी नेता लेनिन की मूर्ति गिराए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच तमिलनाडु में दलित नेता पेरियार की मूर्ति को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर आ गई और फिर आज सुबह दक्षिण कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की घटना। लेफ्ट पर बीजेपी की जीत के महज 48 घंटे के भीतर त्रिपुरा से शुरू हुई ये घटनाएं अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुकी हैं। एक और जहां लेफ्ट इन घटनाओं को आरएसएस से प्रेरित बता रहा है, वहीं बीजेपी का रुख काफी मिला जुला है। बीजेपी के कुछ नेता जहां इन घटनाओं का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ ने इसकी निंदा की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह,
जो कुछ भी घटनाएं कुछ हुई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संबंध में हमारी होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी भी जारी की, ना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि।
इससे एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ति तोड़ने का समर्थन करते हुए कहा था कि लेनिन तो विदेशी हैं। उन्होंने लेनिन को एक प्रकार से आतंकवादी भी बताया और कहा कि भारत में उनकी मूर्ति की जरूरत ही क्या है। लेकिन आज जब संसद में मूर्ति टूटने का मामला उछला तो शोर शराबे के बीच राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी इन घटनाओं की निंदा की।
सीन इन मीडिया सर्टेन प्लेसेस दैट स्टैचूज ऑफ डिफरेंट पीपल।
मैंने मीडिया में देश के अलग अलग हिस्सों में नेताओं की मूर्तियों के तोड़े जाने की घटनाओं के बारे में देखा। यह पागलपन है, जो कोई भी ये कर रहा है ये पागलपन ही है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, पश्चिम बंगाल में हो या फिर त्रिपुरा में।
वहीं सीपीआई नेता अतुल कुमार अंजान का कहना है कि अगर किसी के विचारों से किसी को मतभेद हो तो क्या उसकी मूर्ति तोड़ देनी चाहिए। जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह ने भी इसे गलत बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये घटनाएं विचारों में बदलाव को दिखाती हैं। लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं से इतर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि किसी की भी मूर्ति का तोड़ा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर इन मामलों में कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। वहीं कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की घटना पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की नेता माला रॉय ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह की घटनाओं का विरोध करती है।
कोनो मूर्ति नहीं हमरा भांगार विपक्षे, जारी मूर्ति हो, कोनो मानुषेर मूर्ति एखाने एखाने अनेक मूर्ति संग्रह।
हम किसी भी नेता की मूर्ति तोड़े जाने का समर्थन नहीं करते हैं। सी आर दास मेमोरियल पार्क में बहुत सी मूर्तियां हैं जिनका राजनीतिक महत्व है और बहुत सी ऐसी हैं जो गैर राजनीतिक हैं। हमारी नेता ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि हमारी पार्टी मूर्ति तोड़ने का समर्थन नहीं करती है।
इसी तरह मेरठ में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। इन तमाम घटनाओं को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा की है। भूमिका राय, बीबीसी दिल्ली।
लेनिन की मूर्ति तोड़ने के बाद त्रिपुरा के ग्रामीण इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तनाव के बीच मूर्ति तोड़ने पर राजनीति भी लगातार गर्माती जा रही है। अगरतला से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
बांग्लादेश की सरहद से लगा दक्षिण त्रिपुरा का एक गांव। यहां काफी गहमा गहमी भी है और खौफ भी। इसका कारण है जीत की खुशी से सराबोर कार्यकर्ता। दो दशकों से ज्यादा चल रही वाम दलों की हार के बाद उन्हें निशाना बना रहे हैं, मगर गांव के लोग परिपक्वता का परिचय देते हुए लोगों को संयम बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं।
ऐसा कुछ लड़का रहता है, हर दल में ये रहता है जिसको लोग ये आनंद मिलता है जे इतने दिन बाद हम लोग सरकार में आया तो जो सरकार में था इस इतना दिन इसका ये जो दुकान है वो दुकान का जो मालिक है वो भी सीपीएम का ये जो लंकामुरा का एक जून कन्वेनर है।
दक्षिण त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दीपंकर सेन कहते हैं कि सरकार बदलते ही सरकारी अधिकारियों का रवैया भी बदल गया है।
आप देखिए नजदीक में उसका कैंप है 100 मीटर में, ये पुलिस सुपरिंटेंडेंट ऑफिस है डीएम ऑफिस में, लेकिन पुलिस कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। बाद में आया जो ड्रजर बुलडोजर का ड्राइवर हो उसको पकड़ लिया, उसको लेके गया। लेने के बाद बीजेपी का सब कार्यकर्ता थाना में जाके उसको छुटा के ले।
लेकिन बेलोनिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद शांतनु दत्ता इन आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं कि उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है।
बिल्कुल झूठा आरोप है। उस दिन ऐसा हुआ था कि बीजेपी के खुशी में हम लोग रैली कर रहे थे, हम लोग का कार्यकर्ता वहाँ था भी नहीं। 25 साल बाद हमारा सरकार बना है यहाँ त्रिपुरा में, इसको CPM वालों ने क्या बोलते हैं उसको CPM वालों को देखा नहीं गया है, और उनका ही कार्यकर्ता CPM वालों का ही कैडर ने BJP का टी शर्ट पहन के झंडा लेके और लेलिन का मूर्ति तोड़ा।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगे ग्रामीण इलाकों में भी कई स्थानों पर हिंसा की खबरें मिल रही हैं। CPM के नेता झूमू सरकार मुझे उन स्थानों को दिखाते हैं जो आगजनी का शिकार हुए हैं।
जिस दिन गणना हुआ था, काउंटिंग हुआ था, उस दिन रात को इसमें आग लग गया। लोगों को कहना है ये जो रिजल्ट का दिन ये हुआ है कैसे लगा है किसी को मालूम नहीं है। तो कुछ लोगों का बोलना है जो ये राजनीतिक हिंसा है अभी जो सरकार में आया है BJP।
झूमू सरकार का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में खौफ का माहौल है।
अभी 18 साल में जब ये कम्युनिस्ट चला गया BJP आया, हर घर घर में आतंक है, आतंक मचा हुआ है।
आतंक क्यों है
हम नहीं जानते हैं। जो ये देखिए दुकान को आग लगा दिया, वहाँ एक घर में आग लगा दिया गया है, और वो जो CPM जो करता था उन लोगों को रास्ते में रोक के मर रहा है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मृणाल सेन का कहना है कि उनके कार्यकर्ता कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि हिंसा में आम लोगों का हाथ हो सकता है।
जिसको बोल के यहाँ पे ये एस्टेब्लिश्ड हुआ आइडियोलॉजी, जो गरीब के बात बोल के जो लड़ाई 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 चाहिए लड़ाई करे बस, जो उनका ये आइडियोलॉजी जो स्लोगन है इसके खिलाफ चलते गए ये 20-25 साल से। सिर्फ कुछ लोग पैसा बनाया है, गरीब और गरीब होते गया है, उसका जो लोगों का जो रोष है, आक्रोश है।
पार्टी के दूसरे नेता हिंसा की निंदा तो करते हैं मगर वो CPM को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं।
बात यह है कि इस प्रदेश में कम्युनिस्ट वालों ने लेनिन का स्टेलिन का जो स्टेचू बनाया है, लेकिन लोगों के लिए अस्पताल नहीं बनाया, रहने के लिए मकान नहीं बनाया।
वाम दलों के कार्यकर्ताओं को अंदेशा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर भी आ सकता है। राजनीतिक दलों के अपने अपने पक्ष हैं मगर इतना तो जरूर है कि व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति पर हमलों ने राजनीति को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि चुनावी हिंसा खत्म होनी चाहिए। सलमान रावी, BBC, दक्षिण त्रिपुरा।
BBC संवाददाता सलमान रावी की जमीनी रिपोर्ट आपने सुनी। उससे पहले भूमिका राय बता रही थी कि इस घटना के इर्द गिर्द संसद में हंगामा हुआ और नेताओं ने क्या बयान दिए। सवाल ये कि नेताओं की मूर्तियों को तोड़कर ये किस तरह की राजनीति की जा रही है, क्या इसमें सरकार की भूमिका है और विपक्ष की क्या भूमिका है, समझने के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शोमा चौधरी से बात की।
ये बहुत ही गंभीर बात है क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है ये सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है, मेरे हिसाब में एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल एक सोसाइटल लेवल पे जंग तैयार हो रही है। और इनकी सोच में काफी चीजें हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से एकदम नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी सोच में ये है कि जो भी सोच देश के बाहर से आया है उसके लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, इंडियन सिविलाइजेशन में कोई कम्युनिज्म की सोच नहीं है। तो इनकी इतिहास की बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग है इस चीज के। हम आउटकम्स देख रहे हैं, स्टैचूज देखें या आप लिंचिंग्स देखें, ये सब एक पब्लिक डिस्कोर्स जो तैयार हो रही है उसका नतीजा यही है।
लेनिन के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पेरियार और अभी कुछ देर पहले खबर आ रही है कि मेरठ में अम्बेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुई है। आपको लगता है ये सिलसिला जो अभी शुरू हुआ है कुछ ही दिन पहले और जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, कब तक थमेगा या अभी और राजनीति बाकी है इसके आसपास?
ये थमेगा नहीं जब तक ऑपोजिशन में कुछ ताकत आए। हमारी पूरी लैंडस्केप एक सिंगल पार्टी पॉलिटिक्स पे जाते रह रहा है और इनका बहुत स्ट्रांग और मजबूत, और मैं ये भी कहूंगी कि हम उस पर प्रशंसा भी कर सकते हैं कि इनकी इलेक्टोरल मशीनरी इतनी मजबूत है। पर जब तक एक डेमोक्रेसी में अगर पॉलिटिकल फोर्सेस का ताकत नहीं हुए तो इसको रोकना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बस शुरुआत है। अभी कुछ दिनों में मंदिर मस्जिद मुद्दा भी और तेज रफ्तार से चलनी शुरू होगी। 2019 को इलेक्शन आ रहा है, उसके पहले मुझे लगता है कि ये चीज बस बढ़ता जाएगा।
आपको ध्यान होगा कई साल पहले की बात है, गांधी और नेहरू की प्रतिमाओं के साथ भी छेड़छाड़ होती रही है। तब इतना कोई बहुत ज्यादा हंगामा नहीं होता था और ऐसे मामला तूल नहीं पकड़ता था जैसे इस बार पकड़ा है। आपको क्या वजह लगती है कि अब ये इतना बड़ा इशू क्यों बनता जा रहा है?
पहले भी अगर अंबेडकर के स्टैचूज पे काफी बार हमला हो चुकी है, पर ये काफी आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होती थी और इसलिए इस पे शायद इतना चर्चा नहीं होता था। भारत के बारे में हमारी सोच थी वो एक बुनियादी सोच थी कि हम एक बहुत प्लूरल सोसाइटी है। अगर आप हिंदुइज्म का भी बात करें या हिंदू आइडेंटिटी की बात करें या इंडियन आइडेंटिटी की बात करें, तो एक बुनियादी सोच थी हमारे अंदर कि हम ये आइडेंटिटी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस से तैयार हुई है। अब आती है बीजेपी की सोच जिनसे एकदम ज्योग्राफिकली बाउंड है और इनकी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी बुनियादी चीज क्या है कि हम एक हिंदू राष्ट्र के हैं, तो ये जो स्टैचूज पे जंग चल रही है ये एक्चुअली सोच के ऊपर जंग चल रहा है।
त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति गिराए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की।
जी,
आपको लगता है कि ये निंदा करना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, इस काम को गलत बताना और उनके ही पार्टी के लोग, उनसे ही जुड़े कैडर के लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की बात नीचे तक पहुंचती भी है या नहीं पहुंचती, या ये सब कुछ एक सुनियोजित तरीके से सोच समझ के किया जा रहा काम लगता है आपको?
मैं अंदाजी से नहीं कहने चाहूंगी कि मोदी जी के मन में क्या है कि नहीं है। मैं सिर्फ इसकी प्रमाण देख सकती हूँ कि ये बहुत ताकतवर लीडर है और उनमें काफी गुण है और इनकी पार्टी एकदम इनके काबू में है, इनके बिना कुछ चलती नहीं है। वो कहते हैं ही डजंट वॉक द टॉक, वो आदेश देंगे और ये नहीं रोकेगा, ये हो ही नहीं सकता है। ये मुझे दिखावटी लगती है। हम दोनों चीज नहीं मान सकते हैं, 56 इंच की छाती है और फिर आप इतनी छोटी छोटी चीज, अपने लोगों को आप नहीं काबू कर पा रहे हैं। आप चाइना से लड़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हैं और आप अपने छोटे मोटे फुट सोल्जर्स को नहीं रोक पा रहे हैं।
अच्छा, त्रिपुरा के मामले में राज्यपाल की क्या भूमिका देखती हैं आप, जहां पर अभी सत्ता के केंद्र में राज्यपाल ही हैं? राजनाथ सिंह का कहना है कि साहब उन्होंने त्रिपुरा के डीजीपी को फोन किया और हालात पे काबू पाने के लिए कहा ये वो, और राज्यपाल का तरफ से बयान आया कि उन्हें कोई रिटर्न में आदेश नहीं आया और बस फोन पे बात हुई। ये ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, ये मंशा की दिक्कत है या सरकार की प्रशासन की नाकामी वाली बात है?
आपने सही पकड़ा कि दो चीजें हैं, एक है नियत और आपकी इंटेंशन क्या है। इसमें दो चीजें हैं सिर्फ कि आप क्या वातावरण तैयार किए हैं जहाँ से आप राजस्थान से लेके अभी आप बंगाल, त्रिपुरा सब जगह में आम आदमी को लग रहा है कि हम हथियार उठा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज एक वातावरण से पैदा हो रहा है और मैं इस चीज को मोदी जी और अमित शाह की जिम्मा मानूंगी कि ये वो क्यों नहीं रोक पा रहे। अब जो आप होम मिनिस्टर के राजनाथ जी की आप बात कर रहे हैं, ये तो मुझे गवर्नेंस इशू नहीं लगती है, ये नियत की इशू लगती है कि अगर आपको ये सच्ची बुरा लगा कि लेनिन की स्टैचू तोड़ा गया है, आपका इतना ताकत नहीं है कि आप ये एक छोटी सी समस्या को आप संभाल सकें, तो फिर तो बहुत ही लीडरशिप क्राइसिस है हमारी कंट्री में। फिर हम किस तरह से हम कह सकते हैं कि आप स्ट्रांग लीडर्स हैं, कि इतना मजबूत पार्टी है, आप इतनी छोटी सी चीज का आप नहीं काबू कर पा रहे हैं। तो इसमें तो मुझे गवर्नेंस इशू नहीं लग रहा है, ये नियत के इशू है।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शोमा चौधरी।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
इटली में बीते दिनों हुए आम चुनावों में पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की पार्टी के नेतृत्व वाले राइट विंग गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और जनवादी पार्टी फाइव स्टार मूवमेंट सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं सत्ताधारी लेफ्ट विंग गठबंधन तीसरे नंबर पर रहा, मगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलने के कारण हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार के गठन के लिए, गठबंधन बनाने के लिए और समझौता करने में कई हफ्तों का वक्त लग सकता है। ये पहली बार नहीं है जब इटली में इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। इस बार दुनिया जहान में आदर्श राठौर इसी विषय की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहां, भूमध्य सागर के बीचों बीच बसा खूबसूरत देश इटली इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। यहाँ हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, मगर नतीजे ऐसे रहे कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर अब तक इटली में 60 से ज्यादा सरकारें बदल चुकी हैं आखिर इस राजनीतिक अस्थिरता की वजह क्या है? इटली में भारत के राजदूत रहे राजीव डोगरा बताते हैं,
कई इसके डायग्नोसिस हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि मौसम की तरह सरकार भी बदलती है इटली में, कुछ लोग ये कहते हैं उनकी डाइवर्सिटी का ये नमूना है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इटली जैसे हम आज समझते हैं कि एक यूनिफाइड कंट्री है, 1860 तक यूनिफाइड कंट्री नहीं था, छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज थी। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये उभर के आते हैं इलेक्शन टाइम पे।
लेकिन इन प्रांतों में आखिर किस बात को लेकर भेद है? इटली के राजनीतिक हालात को समझना है तो इसके इतिहास पर भी नजर डालनी होगी। रोमन राजशाही के अंत के बाद 509 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक रोमन गणतंत्र की स्थापना हुई थी। इसी दौर में आस पड़ोस के कई हिस्से इसमें शामिल हुए। इसके बाद उदय हुआ रोमन साम्राज्य का, जो पश्चिमी सभ्यता का राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। लेकिन इसके बाद हालात तेजी से बदले। लेकिन 19वीं सदी के मध्य में इटली में राष्ट्रवादी भावना उभरी। कई सालों के विदेशी प्रभाव के बाद इटली 1871 में लगभग एकीकृत हो चुका था और बड़ी शक्ति के रूप में उभर चुका था। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी की शुरुआत में इटली में तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ, लेकिन सिर्फ उत्तरी हिस्सों में, दक्षिण में नहीं, और ये फर्क आज तक बना हुआ है।
जो आदमी मिलान में बैठा हुआ है, जो काफी इंडस्ट्रियलाइज जगह है, उसकी प्रायोरिटीज जो सिसली में बैठा हुआ आदमी, जहाँ सोचने का तरीका, रहने का और काम करने का तरीका काफी भिन्न है मिलान से, तो उसका वोटिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है, तो ये रिफ्लेक्ट होता है एक नेशनल इलेक्शन में।
लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की जड़ें पहले विश्व युद्ध तक जाती हैं। इटली को पहले विश्व युद्ध में जीत मिली थी, लेकिन इसके बाद वहां आर्थिक और सामाजिक बिखराव आ गया। 1922 तक भयंकर राजनीतिक अस्थिरता आने के बाद इटली के राजा विक्टर इमैनुएल ने हालात संभालने के लिए फासिस्ट पार्टी के संस्थापक बेनितो मुसोलिनी को सरकार बनाने का न्योता दिया। लेकिन 1925 तक मुसोलिनी इटली के तानाशाह बन गए। फिर शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध की, जिसमें मुसोलिनी ने हिटलर के साथ आते हुए फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस विश्व युद्ध में इटली की हार हुई और 1943 में मुसोलिनी को सत्ता से हटा दिया गया। 1946 में जनमत संग्रह के बाद इटली को गणतंत्र घोषित किया गया। 1948 में नया संविधान बना, लेकिन तब से लेकर अब तक सरकारों के बनने, गिरने और गठबंधनों का दौर जारी है। इस बार के चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला। चुनाव से पहले देश के दक्षिणी हिस्से की गरीबी और देश में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाने और प्रवासियों का विरोध करने वाली जनवादी पार्टी फाइव स्टार मूवमेंट चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन क्यों? राजीव डोगरा बताते हैं,
जब आपकी इकोनॉमी ऊपर जा रही होती है तो ये छोटे मोटे जो डिफरेंसेस हैं वो दब जाते हैं, और अगर सरकार बदल भी रही हो तो उसका इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो अपने रफ्तार पे चलती रहती है, और इटालियंस हमेशा माने जाते रहे हैं उनकी इमेजिनेशन पे, उनकी डिजाइन प्रोफिशिएंसी पे, तो अभी तक तो उससे गाड़ी चलती रही। पर अब हाल में आके, क्योंकि उनका एज प्रोफाइल चेंज हो रहा है, इटली एजिंग पॉपुलेशन है, उन्होंने एक तो इमिग्रेशन अपनी तरफ से खुली छोड़ दी कुछ देर के लिए, उसके बाद फोर्स्ड इमिग्रेशन शुरू हो गई, जैसे सीरिया में जो हाल हुआ या उधर लीबिया वगैरह में जो हाल हुआ, तो इटली एक पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था यूरोप में इमिग्रेंट्स के लिए। तो हाल ऐसा हो गया कि इमिग्रेंट्स ज्यादा हो गए जॉब मार्केट में, और इटालियंस जो जॉब मार्केट में आना चाहते थे उनकी अपॉर्चुनिटीज जो है कम होती गई, क्योंकि इमिग्रेंट्स जो है वो कम तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, और नीचे लेवल की जॉब्स के लिए भी वो तैयार हो जाते थे, जो इटालियंस नहीं सोचते थे उनके लिए सूटेबल है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने शुरू हो गई।
प्रवासियों और बेरोजगारी के मुद्दे पर फाइव स्टार मूवमेंट को वोट तो मिले, लेकिन इतने नहीं कि सरकार बना सके। दक्षिणपंथी गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जिसका नेतृत्व इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की पार्टी कर रही थी। बर्लुस्कोनी कई विवादों में रहे हैं और टैक्स फ्रॉड के लिए उन्हें दोषी भी करार दिया गया है। अभी एक साल तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी है, लेकिन उनका गठबंधन एक बार फिर सबसे ज्यादा वोट लेने में कामयाब हो गया। राजीव डोगरा।
बर्लुस्कोनी के एग्जाम्पल ये भी मिसाल है कि नेवर से डाई इन पॉलिटिक्स, कि कभी ये ना कहिए कि पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिशियन जो है उसकी इनिंग्स खत्म हो गई हैं। पर मोर सीरियसली, ये जो राइट विंग की तरफ रुझान जा रहा है इटली का, वो एक ट्रेंड सा है वेस्ट में अगर देखा जाए। ऑस्ट्रिया में राइटर्स पार्टीज सरकार में है, जर्मनी में राइटर्स पार्टीज को काफी बढ़त मिली है, अमेरिका में भी देखा जाए इन ए वे तो राइटर्स पार्टीज आई हैं। तो इटली में जो राइटर्स पार्टीज का आना है, एक तो ये रिएक्शन है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, और दूसरा ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट और डिक्लाइन इकोनॉमी में जो हो रहा है, लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ अब नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जिसमें डिसाइसिव चीजें नजर आए, और राइट विंग पार्टी स्पेशलाइज कर रही हैं वहाँ की नए, उनको ड्रीम्स दिखाने के, नए ख्वाब दिखाने की, नई उम्मीदें जगाने की।
फैशन और डिजाइन इंडस्ट्री से लेकर कई बातों के लिए ग्लोबल लीडर है इटली। इटली ने कई महान विद्वान, कलाकार और खोजकर्ता दिए हैं, जिनमें लियोनार्डो दा विंची, रफाइल, गैलीलियो, मार्को पोलो और क्रिस्टोफर कोलंबस शामिल हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम के कई स्मारक और वेनिस जैसी खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी दी हैं इटली ने। पिज्जा जैसी डिश से लेकर ओपेरा जैसी कला भी इटली से ही पूरी दुनिया में फैली है। लेकिन यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जानकार कहते हैं कि जब तक लोगों में असंतोष रहेगा, राजनीतिक अस्थिरता बरकरार रहेगी।
तो मेरे को ये लगता है ये अब जो है लॉन्ग टर्म इश्यूज सब बन जाएगा। चाहे आप देखें 10 साल पहले बेरलुस्कोनी, फिर फ्रोदी, उनकी सरकारें काफी स्थिर रही थी क्योंकि इटली की जो इकोनॉमी है वो अपने आप में स्टेबल थी उस टाइम और राइजिंग ग्राफ पे थी। एक तो वो, और दूसरा जब तक ये इमिग्रेशन का इश्यू सॉल्व नहीं होगा और जो अभी भी इमिग्रेंट्स इटली में प्रेजेंट हैं उनके बारे में कोई हल नहीं ढूंढा जाएगा, ये डिससैटिस्फैक्शन पब्लिक की पॉलिटिकल इश्यूज में रिफ्लेक्ट हो।
जानकार कहते हैं कि मुद्दा इतना सरल नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने का रास्ता ये है कि इटली की अर्थव्यवस्था उसी दौर में आ जाए जैसी 70 के दशक में थी। सबसे जरूरी बात, लोगों को संतुष्ट करना होगा, और जब तक लोगों में असंतोष रहेगा राजनीतिक स्थिरता आना मुश्किल है।
दुनिया जहान में आदर्श राठौड़ की इस प्रस्तुति के बाद अब खेल समाचारों के लिए सूर्यांशी पांडे स्टूडियो में आ चुकी हैं।
संदीप जी, आज का जो खेल समाचार है वो सबसे पहले ये है कि बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के नए कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है, और इस बार खिलाड़ियों को 4 ग्रेड में बांटा गया है, और सबसे टॉप ग्रेड है A+ कैटेगरी, जिसमें सालाना वेतन मिला करेगा 7 करोड़। और इसमें न्यू, जिसे कहते हैं ना, नए लोग शामिल हुए हैं। एक है तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह, और बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है, और ये बाहर का रास्ता दिखाया गया है क्योंकि एक विवाद के चलते उनको बाहर किया गया है। लेकिन मिलने वाली सालाना रकम जो है वो अब शमी को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और गेंदबाज आर अश्विन को भी टॉप ग्रेड यानी कि A+ में जगह नहीं दी गई है और उनको ए कैटेगरी में भेजा गया है। तो ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है क्योंकि धोनी को ए कैटेगरी में देना और A+ में ना देना ये चौंकाने वाली बात है। साथ ही महिला क्रिकेट में बीसीसीआई ने नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है, वो है सी कैटेगरी, जिसके अंदर सालाना वेतन मिला करेगा 10 लाख, और बी कैटेगरी में मिला करेगा 30 लाख, और ए कैटेगरी में 50 लाख मिला करेगा। और आज हॉकी का खेल जो है वो हुआ था, जिसके अंदर भारत ने मलेशिया पर विजय प्राप्त की है 5-1 से, उन्होंने ये ख्याति प्राप्त की।
बहुत शुक्रिया सूर्यांशी पांडे से खेल समाचार सुनने के बाद। चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं दिलनवाज पाशा से।
त्रिपुरा में रूसी क्रांति के नायक लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने के बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में कई नेताओं की मूर्तियां तोड़ने की वारदातें हुई हैं। केंद्र सरकार ने घटनाओं का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकारों से उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए कहा है। इस मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा भी हुआ। श्रीलंका में अल्पसंख्यक मुसलमानों पर जारी हमलों के मद्देनजर पुलिस विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। देश में सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अभिमन्यु साह ने। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारती समयानुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।